मैं सचिन कुमार संविधान का निर्माण अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। संविधान का निर्माण। महात्मा गांधी ने बहुत पहले 1922 में यह मांग की थी कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। संविधान सभा द्वारा विरचित संविधान की मांग। संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट की भिक्षा नहीं होगी, यह भारत की स्वयं की गई घोषणा होगी। यह सत्य है कि इसे पार्लियामेंट के एक्ट के अधीन अभिव्यक्त किया जाएगा, किंतु यह भारत के लोगों की इच्छा की घोषणा का विनम्र अनुमोदन मात्र होगा, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के संघ के मामले में किया गया था। कानूनी आयोग और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता के कारण भारतवासियों की आकांक्षाओं की पुष्टि के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया। इससे भारत की लोगों की इस मांग ने जोर पकड़ा कि वे बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाना चाहते हैं। इस मांग को कांग्रेस ने 1935 में प्रस्तुत किया। 1938 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से रखते हुए यह कहा, कांग्रेस स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करती है। उसने यह प्रस्ताव किया है कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो। इसी बात को कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने 1939 में फिर से कहा। क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ तक इस मांग का विरोध किया। विश्व युद्ध के प्रारंभ हो जाने पर बाहरी परिस्थितियों के कारण उन्हें यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि भारतीय संविधानिक सभा का हल निकालना अति आवश्यक है। 1940 में इंग्लैंड में बहुदलीय सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि भारत के लिए नया संविधान भारत के लोग ही बनाएंगे। मार्च 1942 में जब जापान भारत के द्वार तक पहुंच गया, तब उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को, जो मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की घोषणा के प्रारूप के साथ भेजा। ये प्रस्ताव युद्ध की समाप्ति पर अंगीकार किए जाने वाले थे। यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दो प्रमुख राजनीतिक दल, उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाएं। मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे। प्रथम, भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करेगी। द्वितीय, संविधान भारत को डोमिनियन प्रस्थिति और ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर की भागीदारी देगा। तृतीय, सभी प्रांतों और देसी रियासतों से मिलकर एक संघ बनेगा। चतुर्थ, किंतु कोई प्रांत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तत्समय विद्यमान अपनी संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा और इस प्रकार सम्मिलित न होने वाले प्रांतों से ब्रिटिश सरकार पृथक संवैधानिक व्यवस्था कर सकेगी। किंतु दोनों राजनीतिक दल इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हो सके। मुस्लिम लीग ने इस बात पर बल दिया, प्रथम, कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर दो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया जाए और श्री जिन्ना द्वारा बताए गए कुछ प्रांतों को मिलाकर एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाए, जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा। द्वितीय, एक संविधान सभा के स्थान पर दो संविधान सभाएं होनी चाहिए, अर्थात पाकिस्तान के निर्माण के लिए पृथक संविधान सभा होगी। मंत्रिमंडल का प्रतिनिधिमंडल। क्रिप्स के प्रस्तावों के अस्वीकार हो जाने के पश्चात और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़े आंदोलन प्रस्ताव करने के बाद दोनों दलों को एकमत करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड बावेल की प्रेरणा से किया गया शिमला सम्मेलन भी है। इन सबके असफल हो जाने पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने अपने 3 सदस्य एक और गंभीर प्रयत्न के लिए भेजे। इनमें क्रिस्प भी था, किंतु यह प्रतिनिधिमंडल भी दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहमति लाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप उसे अपने ही प्रस्ताव रखने पड़े, जिनकी भारत और इंग्लैंड में 16 मई 1946 को एक साथ घोषणा की गई। मंत्रिमंडलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावों में भारत का संघ बनाने और उसका विभाजन करने के बीच समझौता लाने का प्रयत्न किया गया था। मंत्रिमंडलीय प्रतिमंडल ने पृथक संविधान सभा और मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के दावे को स्पष्टतः नामंजूर कर दिया। जिस स्कीम की सिफारिश उन्होंने की थी, उनमें मुस्लिम लीग के दावे के पीछे जो सिद्धांत था, उसको लगभग स्वीकार कर लिया गया। उस स्कीम के मुख्य लक्ष्य ये थे। क, एक भारत संघ होगा जो ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों से मिलकर बनेगा और जिसकी विदेश कार्य, प्रतिरक्षा और संचार के विषयों पर अधिकारिता होगी। शेष सभी शक्तियां प्रांतों और राज्यों में निहित होंगी। ख संघ की एक कार्यपालिका और एक विधानमंडल होगा जो प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधियों से गठित होगा, किंतु जब विधानमंडल में कोई प्रमुख सांप्रदायिक प्रश्न उठेगा तो उसका विनिश्चय दोनों प्रमुख समुदायों के उपस्थित और मतदान करने वाले तथा सभी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। प्रांत इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे कार्यपालिका और विधानमंडल के गुट बना लें, और प्रत्येक गुट उन प्रांतीय विषयों को अवधारित करने के लिए सक्षम होगा जिन पर गुट संगठन की अधिकारिता होगी। सम्राट का 9 दिसंबर 1946 का कथन। कैबिनेट मिशन ने जो स्कीम अधिकथित की थी वह सिफारिश के रूप में थी। मिशन की यह धारणा कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहमति होकर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, किंतु संविधान सभा के लिए निर्वाचन होने के पश्चात एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई। मुस्लिम लीग ने निर्वाचन में भाग लिया और उसके प्रत्याशी चुने गए, किंतु इसी बीच कैबिनेट के गुट संबंधी खंडों के निर्वाचन के बारे में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद हो गए। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रक्रम पर हस्तक्षेप किया और लंदन में नेताओं को यह बताया कि लीग का पक्ष सही है। 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित कथन प्रकाशित किया। यदि ऐसे संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जाता है जिसमें भारत की जनसंख्या के लिए बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हिज मेजेस्टी की सरकार ऐसे संविधान को देश के उस न मानने वाले भाग पर बलपूर्वक लागू नहीं करेगी। इस प्रकार पहले पहल ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि दो राज्य और दो संविधान सभाएं बन सकती है। इसका परिणाम यह हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा पहली बार अधिविष्ट हुई तब मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए और संविधान सभा ने मुस्लिम लीग के सदस्यों के बिना कार्य प्रारंभ किया। 20 फरवरी 1947 का ब्रिटिश सरकार का कथन। इसके बाद मुस्लिम लीग ने यह कहा कि भारत की संविधान सभा को विघटित किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें भारत के सभी भागों के लोगों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने अपने 20 फरवरी 1947 के कथन में यह घोषणा की कि जून 1948 के समाप्ति पर भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटेन भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप देगा। यदि तब तक पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावों के अनुसार संविधान के निर्माण के काम में असफल रहती है तो हिज मजेस्टी की सरकार इस बात पर विचार करेगी कि किसे ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की शक्ति सौंपी जाए, और क्या भारत के लिए केंद्रीय सरकार की संपूर्ण शक्ति सौंपी जाए या कुछ क्षेत्रों में विद्यमान प्रांतीय सरकार को सौंपी जाए या किसी ऐसी रीति से सौंपी जाए जो सर्वाधिक युक्तियुक्त हो और भारत की जनता के सर्वोत्तम हित में हो। इसका परिणाम वही हुआ जो होना था, और लीग ने संविधान सभा में संयुक्त होना आवश्यक नहीं समझा और मुस्लिम भारत के संविधान सभा की मांग पर बल देती रही। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वावेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भेजा, जिसकी शक्ति के अंतरण की तैयारियां शीघ्र हो सके। इस शक्ति अंतरण के लिए एक कठोर प्रांतों के विभाजन का वास्तविक निर्णय इन दोनों प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत पर छोड़ दिया गया। ये विधानसभाएं दो भागों में अधिविष्ट होंगी। इस योजना को माउंटबेटन योजना नाम दिया गया। इसे ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को अपने कथन द्वारा एक औपचारिक रूप प्रदान किया। इसमें अन्य बातों के साथ साथ यह उपबंध था कि बंगाल और पंजाब के प्रांतीय विधानसभाओं को यूरोपीय सदस्यों को अपवर्जित करते हुए यह कहा जाए कि वे दो भागों में अधिविष्ट हों। एक भाग में मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के प्रतिनिधि होंगे और दूसरे भाग में शेष प्रांत के। दोनों भागों के सदस्य पृथक रूप से बैठकर इस बात के लिए मतदान देंगे कि क्या उस प्रांत का विभाजन किया जाए। यदि दोनों भागों में सादे बहुमत से विभाजन के पक्ष में निर्णय होता है तो विभाजन होगा और तदनुसार प्रबंध किए जाएंगे। यदि विभाजन का निर्णय होता है तो प्रत्येक विधानसभा का वह भाग उन क्षेत्रों के बारे में जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है यह निर्णय करेगा कि क्या वह विद्यमान संविधान सभा में सम्मिलित होगा या पृथक संविधान सभा में। यह प्रस्ताव भी किया गया कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में और सिलहट के मुस्लिम बहुमत वाले जिले में जनमत संग्रह किया जाए कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। इस कथन में यह घोषणा भी थी कि सम्राट का यह आशय है कि चालू सत्र के दौरान इस वर्ष डोमिनियन परिस्थिति के आधार पर एक या दो उत्तरवर्ती प्राधिकारियों को घोषणा के परिणाम स्वरूप किए गए विनिश्चयों के अनुसार शक्ति का अंतरण करने के लिए विधान पुनः स्थापित किया जाए। उपर्युक्त योजना के अनुसार मतदान का परिणाम पहले से मालूम था। दोनों प्रांतों पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने विभाजन और नई संविधान सभा में सम्मिलित होने के पक्ष में मतदान किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिलहट में जनमत पाकिस्तान के पक्ष में पाया गया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 3 जून 1947 की योजना के क्रियान्वित हो जाने पर उस घोषणा के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अधिनियम बनाकर शक्ति का अंतरण करने में अब कोई कठिनाई नहीं थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रशंसा में यह तो कहना ही होगा कि उसने उक्त योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप तैयार करने में विलंब नहीं किया और आश्चर्यजनक गति से इस विधेयक को पारित करके उसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में 10 और 11 सस्टम जार्ज अध्याय 30 बना दिया। 4 जुलाई को वह विधेयक संसद में पुनः स्थापित हुआ। 18 जुलाई 1947 को इसे सम्राट की अनुमति मिल गई और यह उसी तारीख को प्रवृत्त हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का यह सबसे विशिष्ट लक्षण था कि भारत के शासन से संबंधित पार्लियामेंट के अन्य अधिनियम जैसे 1858 से 1935 तक के भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट की विधायी इच्छा के अनुसार भारत के शासन के लिए संविधान के रूप में अधिरोपित थे, किंतु 1947 के अधिनियम में ऐसा कोई संविधान नहीं लादा गया। अधिनियम में यह उपबंद किया गया कि 15 अगस्त 1947 से, जिसे इसे अधिनियम में नियत तारीख कहा गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत के स्थान पर दो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे जो भारत और पाकिस्तान के नाम से ज्ञात होंगे। प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को किसी भी संविधान की रचना करने और उसे अंगीकार करने की असीमित शक्ति होगी। साथ ही संविधान सभा को ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सहित निरसित करने की शक्ति होगी। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। भारत की संविधान सभा, जो संविधान सभा अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित की गई थी और जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, वही भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में 14 अगस्त 1947 को पुनः समवेत हुई। इसके गठन के बारे में यह स्मरणीय है कि यह कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल द्वारा सिफारिश की गई स्कीम के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित हुई थी। इस स्कीम की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। प्रथम, प्रत्येक प्रांत को और प्रत्येक देशी रियासत या रियासतों के समूह को अपनी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए थे। स्थूल रूप से 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात था। इसके परिणाम स्वरूप प्रांतों को 292 सदस्य निर्वाचित करने थे और देशी रियासतों को कम से कम 93 स्थान दिए गए। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ये संप्रदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। 3 जून 1947 की योजना के अधीन विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा गठित की गई। बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नए निर्वाचन किए गए। परिणाम स्वरूप जब संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनः समवेत हुई तो सदन की सदस्यता घटाकर 299 हो गई। इनमें 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को जैसा कि आगे सारणी दो में दर्शाया गया है, इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। प्रस्तावित संविधान के प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा सभा की विभिन्न समितियों ने तैयार की थी, उदाहरणार्थ संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति आदि। इन समितियों के प्रतिवेदनों पर साधारणतः विचार विमर्श करते हुए सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति की स्थापना की। इस प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, सभा के विनिश्चयों को और उसके साथ अनुकल्पिक और अतिरिक्त प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप के उपबंधों पर खंडवार विचार करने के लिए संविधान सभा की बैठक इसके बाद नवंबर 1948 में हुई। अनेक सत्रों के बाद खंडों पर विचार करने की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 1949 को पूरी हुई। संविधान का पारित किया जाना। संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन के लिए 14 नवंबर 1949 को हुई और यह वाचन 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। इसी तारीख को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। संविधान के प्रारंभ की तारीख। नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया, अर्थात वे 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ और इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कही गई। अध्याय समाप्त।